दान का अधिकार किसे है और क्यों? 5. साधु ब्राह्मणों में फैली बुराइयां बताओ. 6. लोक मंगल में अभिरुचि नहीं वे साधु ब्राह्मण क्या करें?
7. साधु ब्राह्मण समाजोत्थान और देश की प्रगति में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं?
कथाएं.
1. राजकुमारी वासवदत्ता के पिता गौतम बुद्ध के पास जाकर बोले, भगवान रूपशील और गुणों से आपके योग्य है, उसे पत्नी रूप में स्वीकार करें.
भगवान बुद्ध ने कहा, तात गिरे हुए समाज की शांति, सुख और व्यवस्था लौटाने के लिए मैंने ग्रह और यशोधरा जैसी धर्मपत्नी का परित्याग किया. क्या अब मुझे अपने व्रत से डिग जाना चाहिए? बुद्ध द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर वासुदत्ता बहुत रुष्ट हुई और जब कौशाम्बी नरेश उदयन की पटरानी हुई तो बुद्ध का बहुत तिरस्कार किया. अपने राज्य के नागरिकों को उनके खिलाफ भड़का दिया तो भी उन्होंने धर्म सेवा से मुंह नहीं मोड़ा.
2. एक बार द्रोणाचार्य से किसी ने पूछा, महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धर्म ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देकर समाज को सुव्यवस्थित रखना है, सोता आप करते ही हैं, पर जो ज्ञान से नहीं मानता उसे कैसे ठीक करते हैं?
द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता सशर्धनो इदम ब्राह्मण इदम क्षात्र शास्त्रापि शरादपि.
अर्थात आगे से मैं ब्राह्मण हूँ, मुंह से ज्ञान देता हूँ, किंतु पीठ में मैंने धनुष कर्ण भी धारण किया है. अर्थात जो लोग ज्ञान से मानते हैं उन्हें ज्ञान से ठीक करता हूँ, जो ज्ञान से नहीं मानते उनके प्रति क्षात्र धर्म का पालन करता हूँ, उन्हें फिर शस्त्र से ठिकाने लगाता हूँ.
3. लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय विचारधारा का एक स्कूल खोला, उसमें कुल 30 मासिक पर अध्यापन करने लगे.
एक दिन एक संबंधी ने कहा, इतने कम रुपयों में तो आप मरने के बाद दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं बचा सकेंगे.
तिलक ने हंसकर कहा, ब्राह्मण का काम समाज को निष्काम भाव से शिक्षित और सदाचारी बनाने का है, उसके निर्वाह की चिंता समाज करे.
समाज चाहेगा तो शवदाह के लिए लकड़ियां दे देगा या फिर ऐसे ही बहा देगा, तो क्या हर्ज है?
4. पत्थर धार में लुढ़कता आ रहा था, किनारों ने कहा, अरे इधर आ कुछ क्षण विश्राम कर ले, किंतु पत्थर चलता ही रहा. टकराता संघर्ष करता पत्थर कुछ दिन पीछे घिस घिस कर चिकना हो गया. एक दिन एक ब्राह्मण आया और उसे हृदय से लगाते हुए बोला, तात ब्राह्मण को तप की प्रेरणा देने वाले तुम साक्षात भगवान हो. उस दिन से पत्थर की शालिग्राम रूप में पूजा होने लगी.
5. श्री महादेव देसाई को पता चला कि गोधरा एक ऐसा गांव है जिसके नागरिकों में झगड़ा तो क्या कभी फूट और वैमनस्य भी नहीं हुआ, उस गाँव में कोई अभावग्रस्त भी नहीं है. पूछने पर पता चला यह सब संत पुरुषोत्तम सेवकराम के प्रताप के कारण ही है.
श्री देसाई एक दिन उनसे मिलने गए. संत ने देसाई का हार्दिक स्वागत किया, उन्हें अपने हाथ से स्नान कराया, धोती धोई और प्रेमपूर्वक सारा गांव दिखाया.
महादेव ने कहा, आप जैसे साधु संत हर गांव में हो जाते तो देश का भाग्य ही बदल जाता. 6. साधु ने ब्रह्मचारी शिष्य से पूछा, बेटा जब तुम्हारा मित्र गंगाजी में डूबने वालों को बचा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे?
मैं नियम पालन कर रहा था गुरुदेव, वह समय मेरे जप का था, जप कर रहा था. शिष्य की बात सुनकर साधु बड़े दुखी हुए, बोले बेटा जिसने पीड़ितों की सेवा से जप को बड़ा माना उसने पूजा के मर्म को नहीं समझा, ऐसा जानना चाहिए.
7. साधु भगवान के ध्यान में बैठे थे तभी एक व्यक्ति ने उन पर पीछे से हथियार चलाकर घायल कर दिया और वहां से भाग निकला. कुछ लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और मारने पीटते साधु के पास लाए. साधु ने देखते ही कहा, अरे इसे क्यों मारते हो भाई? लोगों ने बताया इसी ने तो आपको मारा है. साधु ने कहा, ऐसे लोगों को ही प्यार करना और उन्हें सच्चा रास्ता दिखाना साधुओं का कर्तव्य है. क्या तुम यह चाहते हैं कि मैं अपने धर्म का पालन न करूं?
8. राजा ने एक साधु को दरबार में आने का आग्रह किया.
साधु ने सोचा कि मेरे प्रतिदिन दरबार में जाने से लोग यही सोचेंगे, अब इसकी भगवान पर श्रद्धा नहीं, यह लोभी हो गया. अतएव वह अपने मुंह में कालिक पोत कर राजा के पास पहुंचा. राजा ने पूछा, आपने मुंह क्यों काला किया? साधु ने कहा, लोग मुझे कलंकित करें, इससे अच्छा था मैं ही अपने आप को कलंकित कर लूं ताकि साधु वेश तो कलंकित होने से बच जाए. राजा साधु पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस दिन से उनके उपदेश सुनने कुटिया पर ही जाने लगा.
9. महात्मा कैयट भाष्य लिखा करते, उनकी पत्नी लकड़ी काट लाती, उसी से दोनों का गुजारा चलता. इस बात का पता राजा को चला तो वह बहुत सा धन लेकर कैयट के पास पहुंचे. महात्मा ने वह धन अस्वीकार करते हुए कहा, राजन
धन पाकर हम लोग धन की उपासना में लग जाएंगे, फिर ज्ञान जैसी अमूल्य संपत्ति का आदर कौन करेगा? राजा ने उन्हें प्रणाम किया और यह कहकर कि तुम जैसे ब्राह्मणों से ही यह देश धन्य है, वापस लौट आया. 88. मंदिर आस्तिकता और सत्प्रवृत्तियां जगाने में लगे.
प्रश्न.
1. भगवान के मंदिरों की स्थापना करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? 2. आस्तिकता से क्या तात्पर्य होता है?
3. आस्तिक मनुष्य समाज को किस तरह लाभ पहुंचाता है?
4. मंदिरों के निर्माण में इतनी अधिक धन संपत्ति लगाने का कारण क्या हो सकता है? 5. मंदिरों में कथा प्रवचन किस हद तक सत्प्रवृत्तियों को जगाने में सहायक हैं? 6. मंदिरों के पुजारी किस तरह के व्यक्ति होते हैं? 7. आज के मंदिरों के रूप कार्यों पर प्रकाश डालिए। 8. हमारे मंदिरों में लगी संपत्ति तथा व्यक्तियों के क्या पूजा और आरती के सिवाय भी कोई कर्तव्य है?
कथाएं।
एक बार कबीर ने प्रसंगवश अपने एक अनुयायी से कहा, मैं अभी एक मंदिर से होकर आ रहा हूँ। वह सज्जन बहुत विस्मित हुए, बोले, महात्मन, आप तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, फिर मंदिर कैसे चले गए? आप तो अभी अमुक व्यक्ति के घर से आ रहे हैं। कबीर हंसकर बोले, हाँ हाँ, वह घर ही मंदिर है जहाँ नित्य ईश्वर भेजन होता हो, जिस घर के लोग स्वाध्याय सत्संग करते हों, बच्चों को अच्छा बनने की शिक्षा देते हों, वह घर मंदिर ही कहे जाने योग्य है।
2. एक बार गांधी से एक सज्जन ने पूछा, बापू, मंदिर की परिभाषा क्या है? बापू बोले, वह स्थान जहाँ से आस्तिकता, उपासना, श्रद्धा, अनुशासन, प्रेम, निर्भयता का पाठ पढ़ाया जाता हो, मंदिर ही है, भले ही वहाँ कोई मूर्ति हो अथवा नहीं। 3. एक बार सिकंदर ने एक ऐसे गांव पर चढ़ाई कर दी जहाँ के सभी आदमी युद्ध में मारे गए थे, स्त्रियां ही स्त्रियां थी। सिकंदर भूखा था तो उसने भोजन मांगा, स्त्रियों ने उसके सामने सोना चांदी इकट्ठा करके पटक दिया। सिकंदर बोला, मुझे सोना नहीं, रोटी चाहिए। स्त्रियां बोली, रोटियां चाहिए थी तो यूनान से क्यों आए, तुम्हें सोना चाहिए सो ले जाओ।
4. मूर्ति को प्रणाम करने लोग दूर दूर से आते, फलस्वरूप उसे अहंकार हो गया, उसने किसी से अच्छी तरह बात करना भी बंद कर दिया।
यह देखकर आकाश बोला, बावरी मूर्ति, यह लोग तुझे नहीं अपनी श्रद्धा को प्रणाम करने यहाँ आते हैं।
तुझे प्रणाम लेना है तो उठ और इन सब के अंतःकरण में ज्ञान के दीप जला।
5. दानवीर सेठ जुगल किशोर बिरला की मृत्यु होने लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पास ही खड़े एक विश्वास पात्र ने पूछा, सेठ जी, अपने जीवन भर धर्म किया, हजारों मंदिर बनवाए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, दुख क्यों कर रहे हो?
बिरला जी आंसुओं के बीच बोले, मैंने मंदिर बनवाए पर उनमें जन जागरण की प्रवृत्तियां न चल सकी, मुझे इसी बात का दैख है।
6. मदन मोहन मालवीय जी एक धनी सेठ के पास हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दान लेने गए। सेठ जी बोले, कोई मंदिर बनवाना हो तो हमसे चंदा ले लें। मालवीय जी बोले, मंदिर पहले ही इतने बने हैं कि वे यदि अपनी सारी ताकत लोगों का मनोबल, चरित्र और नैतिक बल जगाने में लगा दें तो सारा विश्व जाग जाए।
अब मंदिरों की नहीं, ज्ञान मंदिरों की आवश्यकता है।
सेठ जी मालवीय जी के कथन से बहुत प्रभावित हुए और यथेष्ट चंदा दिया। 7. पुजारी नियत समय पूजा करने आता और आरती करते करते भाव विह्वल हो जाता, घर आते ही वह अपनी पत्नी बच्चों के प्रति कर्कश व्यवहार करने लगता।
एक दिन उसका नन्हा वाला बच्चा भी साथ लगा चला आया। पुजारी स्मृति कर रहा था, हे प्रभु, तुम सबसे प्यार करने वाले, सब पर करुणा लुटाने वाले हो। अभी वह इतना ही कह पाया था कि बच्चा बोल उठा, पिता, जिस भगवान के पास इतने दिन रहने पर भी आप करुणा और प्यार करना न सीख सके, उस भगवान के होने न होने से क्या लाभ?
पुजारी को अपनी भूल मालूम पड़ गई और वह उस दिन से आत्मनिरीक्षण व आत्म सुधार में लग गया। 89. त्योहार और संस्कार प्रेरणा पद्धति से मनाए जाएं। प्रश्न।
एक प्रमुख नव पर्वों के नाम बताइए।
2. प्रत्येक पर्व की विशेषता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए।
3. प्रमुख 10 संस्कारों के नाम बताइए।
4. प्रत्येक संस्कार की उपादेयता पर प्रकाश डालिए।
5. पर्व और त्योहार मनाने के पीछे हमारा प्रयोजन क्या होता है।
6. पर्वोत्सव एक वरदान है, सिद्ध कीजिए।
7. पर्व और त्योहार समाज शिक्षण की आवश्यकता किस प्रकार पूरी कर सकते हैं। 8. किस प्रकार कोई चतुर वक्ता कुरीतियों एवं विकृतियों का उन्मूलन करा सकता है।
कथाएं।
1. आज शस्त्र पूजा क्यों होती है।
एक ग्रामीण युवक ने पुरोहित से प्रश्न किया, इसलिए कि मनुष्य को शक्तिवान होना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो असुरता के दमन के लिए शस्त्र प्रहार की क्षमता भी।
युवक के मन में बात बैठ गई।
शत्रुओं पर विजय की कामना रखने वाले सरदार वल्लभ भाई ही वह युवक थे जिन्होंने अपने साहस से सभी त्योहारों के आदर्श उतारने की प्रेरणा ग्रहण कर सके तो भारतीय विश्व में सर्वोपरि हो जाएं। 2. एक स्त्री का पुंसवन संस्कार कराते हुए आचार्य ने बताया, सती मदालसा ने अपने पुत्रों को गर्भ से ही धर्म नीति और राजनीति सिखला दी थी। अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह वेद सुना रहे थे, जितनी देर वे जागती रहीं उतनी सारी कथा गर्भस्थ शिशु ने सुनी और चक्रव्यूह वेद सीख लिया। यही बालक अभिमन्यु था जिसने 14 वर्ष की आयु में अकेले 8 महारथियों से युद्ध चक्रव्यूह भेदन किया। यदि सभी माताएं इसी तरह श्रेष्ठ जीवन जिये तो संतान को सुयोग्य बना सकती हैं, इस संस्कार का यही उद्देश्य है।
3. घर के सभी लोग गंगा दशहरे का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर महात्मा को कुछ संदेह हुआ, उन्होंने पूछा, बेटा, घर में आज बन क्या रहा है? हलुआ, पकौड़ी, पाग, कोफ्ता, साबुदाने की खीर, बर्फी। और लड़का अभी आगे और बताता, तभी महात्मा ने बीच में काटकर कहा, बस बेटा,
समझ गया तुम्हारे घर त्योहार का अर्थ क्या है।
ऐसे त्योहार से तो बिना त्योहार अच्छा जिसमें लोग उल्टा शिक्षण ग्रहण कर रहे हों।
4. घर में चहल पहल चल रही थी।
चंचल पौत्र ने लोकमान्य से पूछा, बाबा, आज क्या बात है? अम्मा जी, दादाजी सभी पूजा कर रही हैं, आज स्त्रियों का त्यौहार है। तीजा, लोकमान्य ने समझाया, आज सद्वा स्त्रियां अपने पतियों की कल्याण कामना करती हैं और कुमारियां अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत।
लड़का बोला, मैं भी तीजा व्रत करूंगा बाबा। तिलक बोले, बेटा
तू कोई स्त्री है,
तू तो लड़का, पर मुझे भी तो अच्छी स्त्री चाहिए। तिलक ने बच्चे को स्नेह से गले लगाते हुए कहा, बेटा स्त्रियों को इस एक त्यौहार ने ही पवित्र कर दिया। भारतीय नारी कभी खराब नहीं होती, यह तो यहाँ के मनुष्य ही हैं
जो अनेक व्रत और त्यौहार मनाकर भी नहीं सुधरते। पांच, श्री बीज लगाकर जप कर रहे बुद्ध शिष्य से गुरु ने पूछा, क्या कर रहे हो बेटा?
शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज दीपावली है,
लक्ष्मी का पर्व है, आज के जप से लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी।
महात्मा बोले, बेटा सो तो ठीक है, पर यह दीपक जल रहे हैं, यह तो कह रहे हैं पहले अपना तन मन प्रकाशवान बनाओ, पवित्र करो और फिर परिश्रम करो, तब लक्ष्मी आएगी, इनका भी तो मतलब समझो।
छह, एक अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा, आपके यहाँ इतने अधिक व्रत त्योहार मनाए जाते हैं फिर भी लोग सुखी क्यों नहीं? गांधी जी ने पूछा, लोग त्योहार नहीं मानते, लकीर पीटते हैं।
हमारे पर्व या त्योहार तो कोई एक भी अच्छी तरह मना ले तो उसका जीवन धन्य हो जाए और समाज का भी बेड़ा पार हो जाए।
नब्बे, जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाए जाएं।
प्रश्न
एक, इसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य भी अवतारी पुरुष बन सकता है? दो, मनुष्य शरीर पाकर जो काम हमें करने चाहिए वे हम किस कारण नहीं कर पा रहे हैं? तीन, माया किसे कहते हैं तथा माया के चंगुल में फंसा व्यक्ति किस प्रकार व्यतीत करता है?
फाइव, जीवन मिला है तो उसका लाभ किस प्रकार लेना चाहिए?
छह, जन्मदिन से बढ़कर और कोई त्योहार व्यक्तिगत जीवन में क्यों नहीं है?
सेवन, जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाना चाहिए? एट, जन्मदिन का वास्तविक लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? नाइन, युग निर्माण योजना के अनुसार विवाह दिन किस प्रकार मनाया जा सकता है? कथाएं। वन, पिता को भगवान कृष्ण की पूजा करते देखकर बालक ने पूछा, पिताजी कृष्ण को क्यों पूजना चाहिए? पिता ने बेटे से कहा, बेटा आज कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण का जन्मदिन है, उनका जन्म दिवस मनाने का अर्थ है उनके ज्ञान गुण शक्ति और ईश्वरीय प्रकाश को हम भी अपने अंदर धारण करें।
पुत्र ने पिता की बातें अच्छी तरह समझ ली और अपने जीवन में उन गुणों को धारण करने वाला यही बालक गीता का पंडित लोकमान्य तिलक हुआ।
टू, शरीर से दुबले शिष्य को हनुमान को पूजते और तिलक करते देखकर गुरु ने पूछा, बेटा हनुमान जी को क्यों पूज रहे हो? शिष्य बोला, भगवान आज इनका जन्मदिन है, आशीर्वाद देंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। गुरु बोले, बेटा स्वस्थ होने के लिए हनुमान को पूजना ही काफी नहीं, हनुमान बनना और हनुमान जैसे कर्म भी करना चाहिए, तभी उनका जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा। थ्री, एक दिन दुखी मनुष्य बैठा भगवान को कोस रहा था, कह रहा था, भगवान ने किसी को इतना दिया कि रखने को जगह नहीं, किसी को इतना कम कि दो वक्त भोजन के भी लाले। महात्मा टॉल्स्टॉय उसकी बात सुन रहे थे, बोले, बेटा अपना एक हाथ 1000 में बेचेगा क्या? वह युवक कुछ न बोला। टॉल्स्टॉय बोले, दूसरा हाथ भी काट कर दे दे तो 20,000, आंखें दे दे तो 40,000, पांव भी दे दे तो 7,000, जीभ कान नाक के भी 10,000 ले ले।
युवक बोला, महात्मन आप पागल हुए हैं, रुपयों के लिए शरीर कटवा दूं।
टॉल्स्टॉय बोले, नहीं बेटा मैं यह कब कह रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ कि 1,00,000 का शरीर लेकर भी तुम दुर्भाग्य का रोना रो रहे हो। फोर, एक मनुष्य बोला, भगवान ने शेर को कितना साहसी और शक्तिशाली बनाया, बल सारा हाथी को दे दिया, दूध गाय को फल पौधों को मनुष्य को उसने क्या दिया? गुरु बोले, बेटा वह बुद्धि वह ज्ञान जिसके उपयोग से वह शेर और हाथी से भी बलवान है, उठ अपनी बुद्धि का उपयोग कर और अपना जीवन सार्थक बना। फाइव, माँ पूजन आदि की तैयारी कर रही थी।
बच्चे ने पूछा, माँ क्या कर रही है?
तेरे जन्मदिन के पूजन की तैयारी। जन्मदिन के पूजन का क्या मतलब है, माँ बच्चे ने पूछा।
माँ बोली, बेटा आज से तू 1 वर्ष और बूढ़ा हो गया, आज तेरा विवेक जगाएंगे कि तूने अब तक कितना समय समझदारी से बिताया, कितना बेखबरी से, जन्मदिन मनाने का यही उद्देश्य है। छह, शिष्य ने शिकायत की, गुरुवर आप कहते हैं इंद्रियों की निरर्थकता याद रखे, पर जब वासनाएं प्रबल हो उठती हैं तो सारा दर्शन का ज्ञान धरा रखा रह जाता है। गुरु ने कहा, हाँ वत्स,
संसार का स्वरूप कुछ ऐसा ही है।
आज से तू शाम को सोया कर तो यह भावना किया कर मर रहा हूँ, प्रातःकाल उठाकर तो यह मानकर मेरा नया जन्म हो रहा है, मुझे इसे समझदारी और विवेक से जीना चाहिए।
मृत्यु को याद रहने और उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने से वह शिष्य विकार मुक्त संत एकनाथ हो गया।
सात, बूढ़ा हो रहा था, कह रहा था, घर वाले तंग करते हैं, शरीर काम नहीं देता, भगवान भी सहायता नहीं करता। पास से एक संत गुजर रहे थे, बोले, यह बातें तब याद नहीं की जब बालक था।
युवक हुआ तब रंगरेलियों के आगे न बुढ़ापा याद रहा न भगवान। तीसरी अवस्था में उचित था गृहस्थी के झंझट कम करके अपना परलोक सुधारना और समाज सेवा का पुण्य लूटना, तब भी मायाजाल में पड़ा रहा।
अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया तब क्यों रो रहा है। आठ, महात्मा कबीर के पास एक युवक दंपति पहुंचे और बोले, महात्मन हम दोनों में परस्पर प्रेम और एकता न होने से खींचतान बनी रहती है, कुछ समझ में नहीं आता गृहस्थ सुख कैसे पाएं।
कबीर बोले, विवाह के समय जो प्रतिज्ञाएं लिखकर घर की दीवारों में टांग लो ताकि कर्तव्य याद रहें, अभी तुम कर्तव्य का ध्यान नहीं रखते, अधिकारों तक सीमित हो। कबीर की सिखावन मानने वाले युवक दंपति का जीवन निहाल हो गया।
नौ, इंग्लैंड के धन कुबेर डोरिस और उसकी लिली में प्रगाढ़ प्रेम था।
वर्ष में एक बार उनका जन्मदिन आता तो वे एक दूसरे को सर्वोत्तम भेंट दिया करते। देवयोग से व्यापार में घाटा शुरू हुआ और यहाँ तक हुआ कि डोरिस दाने दाने को मोहताज हो गया। फिर विवाह की वर्षगांठ आई। पति पत्नी दिन भर उपहार की खोज करते रहे, कुछ न मिला खाली हाथ। दोनों घर लौटे तो सोच रहे थे कैसे मिले, आंखें गीली किए आमने सामने हुए।
डोरिस ने लिली को हृदय से लगाकर कहा, लिली जब तक हमारे हृदय में प्रेम है किसी और उपहार की चिंता क्यों करें।
वे गरीबी में भी प्रेम का सुख पाते हुए जिए। 10, दिल्ली के युवक दंपति भरतकुमार एम काम और सुधा बी ए के 5 वर्ष अत्यंत कलह में बीते। एक दिन वे गायत्री तपोभूमि आए। उनका विवाह का दिवसोत्सव संपन्न कराया गया। भूली हुई प्रतिज्ञाएं याद आईं। कर्तव्य पालन का भाव जाग गया और तब पति पत्नी में वह प्रगाढ़ प्रेम हुआ कि मोहल्ले वाले दांतों तले उंगली दबा गए। 91, गायत्री और यज्ञ, भारतीय धर्म संस्कृति के माता पिता। प्रश्न,
एक, गायत्री और यज्ञ, इन दोनों का भारतीय संस्कृति के साथ क्या नाता है। दो, शास्त्रकारों ने गायत्री जी के कितने मुख बताए हैं तथा इनके लाभ प्राप्त करने की क्षमता किसमें है।
3, गायत्री महामंत्र की उपासना करके मनुष्य क्या लाभ प्राप्त कर सकता है।
4, गायत्री की प्रतिमा माता के रूप में बनाकर क्या प्रतिपादित किया जाता है। 5, हमें अपने परिवार को किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए। 6, निराकार गायत्री की उपासना करने वाले को वह किस प्रकार से करनी पड़ती है।
7, यज्ञ से मनुष्य को क्या प्रेरणाएं ग्रहण करनी चाहिए। कथाएं। 1, महर्षि विश्वामित्र गायत्री की शोध कर रहे थे, उन्होंने देखा यह सारा संसार ही सूर्य की चेतना से चेतन है, सो वे सूर्य का चिंतन मनन करने लगे। सूर्य की शक्ति प्रदायिनी किरणों ने शरीर के मल विकार दूर कर दिए तो उनकी प्राण बुद्धि निर्मल हो गई। एक दिन वे ध्यान में इतने लीन हो गए कि उनकी चेतना सूर्य चेतना से एकाकार हो गई। विश्वामित्र दृष्टा हो गए। गंगा दशहरा का शुभ दिन, उस दिन से महर्षि ने अपना सारा जीवन ही गायत्री महाविद्या के प्रसार में लगा दिया। 2, महात्मा आनंद स्वामी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महात्मन आप कहते हैं सूर्य चेतन है, इसका क्या प्रमाण। गायत्री उपासना से आत्मा विकास किस प्रकार होता है। प्रमाण, आनंद स्वामी बोले, सूर्य के न रहने अर्थात रात होते ही मूर्छा अर्थात नींद आने लगती है।
वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य समाप्त हो जाए तो सौर मंडल से जीवन समाप्त हो जाए। चेतन से चेतन को जोड़कर आत्मा विकास वैसे ही होता है जैसे कोई नहर से नाली निकालकर तालाब को भी पानी से भर ले।
3, महर्षि पाराशर ने व्यासदेव ने पूछा, भगवन
गायत्री को आयु प्राण बल बुद्धि और प्रज्ञा प्रदान करने वाली कहा जाता है, सो क्यों।
पाराशर ने पुत्र की जिज्ञासाएं शांत करते हुए कहा, वत्स, प्राण प्रकाश उष्णता और विद्युत रूपी संति है, इसी के न रहने से शरीर निष्क्रिय हो जाता है और अधिकता से बौद्धिक एवं आत्मिक विकास गायत्री उपासना से उसका देवता यही 3 वस्तुएं देकर प्राण का विकास करता है।
4, पांडवों ने मरणोन्मुख भीष्म पितामह से प्रश्न किया, वह देव कौन सा है जिसमें समस्त देवता समाहित हों।
भीष्म बोले, आद्यशक्ति गायत्री।
गायत्री की उपासना न कर किसी और देव को पूजता है वह ऐसा ही है जो अपने घर में छिपे खजाने को नहीं जानता और बाहर धन की खोज में भटकता फिरता है। 5, मदन मोहन मालवीय जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज मेरे माता पिता कोई नहीं है,
अनाथ ब्राह्मण हूँ, कुछ कृपा कीजिए। मालवीय जी बोले, ब्राह्मण की माता गायत्री यज्ञ पिता, जब तक यह देव माता पिता हैं तब उसे सांसारिक माता पिता की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति गायत्री उपासना करने लगा और निहाल हो गया। 6, प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्य को उत्पन्न किया।
मनुष्य ने अपना सारा जीवन दैहिक कष्ट और अभावों से घिरा देखा तो उसने पितामह विधाता से शिकायत की, भगवान इस संसार में असहाय छोड़े गए हम मनुष्यों की रख और पोषण और करेगा। पितामह बोले, यज्ञ तात यज्ञ द्वारा तुम देवताओं को आहुतियां प्रदान करना, संतुष्ट हुए देवता तुम्हें धन संपत्ति बल और ऐश्वर्य से भर देंगे और सच ही जब तक यह देश यज्ञ करता रहा धन धान्य की कमी कभी नहीं रही। 7, एक परीक्षण किया गया।
12, शीशियां अन्न दूध मांस आदि से भरी गई।
6, एक कमरे में रखी गई, 6 दूसरे में वहां से जो काफी दूर। 1, कमरे को ज्यों का त्यों रखा गया, दूसरे में हवन किया जाता रहा। पाया गया कि जिस कमरे में हवन नहीं होता था उसमें रखी शीशियों का खाद्य शीघ्र सड़ने लगा और जल्दी बेकार हो गया।
8. फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर जीरो टिल्विटी, मद्रास के सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर जीरो करालकिन, डॉक्टर जीरो टाटलेट, फ्रांस के डॉक्टर जीरो हेफकिन, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, हवन पर प्रयोग किया और बताया कि अग्नि में विविध औषधियां लाने से क्षय चेचक तथा दूसरे अनेक रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ चिकित्सा, पेज 1995, डॉक्टर जीरो फुन्नलाल, एम जीरो डी जीरो। 92. गायत्री यज्ञ आंदोलन, एक महान रचनात्मक अभियान। प्रश्न 1. यज्ञ शब्द का व्यापक प्रयोजन गायत्री यज्ञ से किस प्रकार जुड़ा है? 2. क्या गायत्री और यज्ञ इन दोनों के समन्वय से हो परिपूर्ण मानवता का उद्भव हो सकता है?
3. गायत्री यज्ञ आंदोलन किस तरह से पुराने और वर्तमान समय के यज्ञों में समानता ला रहा है?
4. यज्ञ की महिमा को बतलाइए। 5. यज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है? 6. यज्ञीय जीवन को अपनाने पर मानव महान कैसे बन सकता है? 7. गायत्री यज्ञ आंदोलन सामाजिक जीवन को यज्ञीय जीवन के अनुरूप ढालने में प्रयत्नशील है,
किस तरह?
8. क्या गायत्री यज्ञ आंदोलन अधिक दृष्टि से भी कम खर्चीला है,
किस तरह? 9. नर और नारी समान गायत्री यज्ञ आंदोलन से किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
कथाएं 1. अश्वमेध समाप्त कर बैठे महाराज युधिष्ठिर कुछ चिंतित से थे।
ज्ञानी शुकदेव ने चिंता कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तात कुछ दिन में लोग यज्ञ करना छोड़ देंगे, तब वायुमंडल धूम्र विकारों से भर जाएगा, उससे लोगों के मन दूषित होकर पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, यही सोचकर दहकी हो रहा हूँ।
उससे बचाव का कोई उपाय नहीं है भगवन।
सहदेव ने पूछा है कि विस्तार से ही लोगों के मन स्वच्छ होंगे, पर उस समय हम 5 मिलकर भी वह काम पूरा न कर सकेंगे, इसलिए मुझे अनेक अंशों में अवतार लेना पड़ेगा और जगह जगह यज्ञों का आंदोलन करना पड़ेगा।
2. संसार के कल्याण की चिंता से भगवान कल्कि महेंद्र पर्वत पर अपने गुरु परशुराम के पास विराजमान थे। उन्हें चिंतित देखकर परशुराम ने पूछा, भगवान आप आनंद के भी आनंद हैं, फिर चिंता का हेतु क्या है? निष्कलंक प्रभु ने उत्तर दिया, देव आनंद स्वरूप होकर भी मैं संसार के हित के लिए दुखी रहता हूँ।
समझ नहीं पाता संसार का दुखों से उद्धार कैसे करूँ?
परशुराम ने हंसकर कहा, आप संसार में जाकर यज्ञ कराएं, यज्ञ से संस्कार शुद्ध होंगे, आप वाजपेयी यज्ञ कराएं, उससे लोगों की बुद्धि में अध्यात्म का उदय होगा, तब फिर अश्वमेध करना, उससे सारी दुनिया का कायाकल्प होगा। कल्कि बड़े प्रसन्न हुए और यज्ञ आंदोलन की इच्छा लेकर मथुरा नगरी की ओर चल पड़े। 3. एक बार महर्षि दयानंद ने प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद से प्रश्न किया, ऐसा कोई उपाय है जिससे संसार के सभी लोग रोग मुक्त और स्वस्थ रखे जा सके? दंडी स्वामी ने उत्तर दिया, यज्ञ। यज्ञ से ही संसार में सुख शांति आएगी और उसी से लोग स्वस्थ होंगे, यज्ञ से ही मनों का संस्कार होता है। उस दिन से महर्षि गायत्री यज्ञों के प्रचार में फिर लग गए। 4. स्वामी सत्यदेव विद्यालंकार के पास एक सज्जन आए और अखबार दिखाते हुए बोले, देखो आजकल सारा संसार ही वायु प्रदूषण से चिंतित है और अब तो समुद्र का जल भी प्रदूषित हो चला। स्वामी जी हंसे और बोले, आखिर अब तो लोग यज्ञ की महत्ता समझेंगे।
उन्होंने उक्त सज्जन से कहा, आप भी जाइए और गायत्री यज्ञों का प्रचार कीजिए। 5. रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर शून्य शिरोविच प्रयोग कर रहे हैं कि किस वस्तु के धुएं से कौन से लाभ होते हैं?
6. केमिकल प्रॉपर्टीज की सम्मति है कि जायफल, जावित्री, सूखा चंदन, इलायची आदि जलाने से उनका उपयोग भाग वायुभूत हो जाता है। उनके परमाणु 110,000 से लेकर 100 मिलियन सेंटीमीटर व्यास तक सूक्ष्म हो जाते हैं। यह किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वायरस को मार सकते हैं। 7. डॉक्टर जीरो हेनमैन से एक व्यक्ति ने पूछा, औषधि का सबसे अधिक प्रभाव किसी विधि से होता है? अपनी पुस्तक ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन की धारा 190 में उन्होंने इसका उत्तर लिखा है, औषधि का सबसे अच्छा प्रभाव सूंघने और श्वास लेने से होता है। औषधि का यह स्वरूप हवन से ही प्रदान किया जा सकता है। 93. शिखा भारतीय संस्कृति की धर्मध्वजा। प्रश्न 1. शिखा तथा यज्ञोपवीत हमारी संस्कृति का प्रतीक है,
सिद्ध कीजिए पुराने समय के लोगों के आधार पर।
2. प्राचीन काल में शिक्षा का क्या महत्व था? 3. आज कैसा व्यवहार हो रहा है? शिक्षा तथा यज्ञोपवीत कैसा था हमारे यहाँ? 4. शिखा संरक्षण का वैज्ञानिक महत्व किस प्रकार है, सिद्ध कीजिए। 5. हमारे भारतीय तत्ववेताओं ने इसकी उपयोगिता क्या बताई थी? 6. शिखा बंधन का उद्देश्य क्या है?
7. शिखा रखवाने के लिए किस तरह का उपाय करना चाहिए?
प्रश्न
1. गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को पकड़कर सरहिंद के किले में ले जाया गया और उनसे चोटी कटाने को कहा गया तो उन्होंने कहा, जब तक सिर है तब तक चोटी न कटेगी। उन्हें दीवार में जीवित चुन दिया गया पर उन्होंने शिखा के स्वाभिमान को गिरने न दिया।
2. नंद वंश के राजा महानंद के दुष्कृत्यों को देखकर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कहा, अब मैं दिखाऊंगा कि ब्राह्मण की शिखा का अपमान कितना भयंकर होता है। उन्होंने विचार शक्ति एकाग्र की अनेक राजकुमारों को एक सूत्र में संगठित कर महानंद पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया।
तीन, एक बार गांधी जी से एक सज्जन ने पूछा, आप हिंदू हैं क्या, इसीलिए चोटी रखते हैं?
गांधी जी ने उत्तर दिया, नहीं, चोटी हिंदू धर्म की रक्षा करती है, इसलिए चोटी रखता हूँ।
चार, शिवाजी से भेंट करने आए मुसलमान सरदार ने कहा, मैं तो आपकी सक्रियता और आपका शौर्य देखकर दंग हूँ, यह शौर्य और सक्रियता कहाँ से आती है?
शिवाजी ने सिर पर हाथ फिरते हुए कहा, इस चोटी और यज्ञोपवीत से।
जब तक मेरे शरीर में यह दो वस्तुएं हैं तब तक मैं निश्चिंत नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे इनकी रक्षा का भार सौंपा है।
फाइव, रामचंद्र नामक एक भारतीय युवक केवल इसलिए चोटी नहीं रखते थे कि लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। एक दिन उनके गुरु चले आ रहे थे कि रामचंद्र अपने एक मुसलमान और एक ईसाई मित्र से बात करते मिल गए। समय देखकर गुरु ने पूछा, रामचंद्र तू शिखा क्यों नहीं रखता? इससे पूर्व कि रामचंद्र कुछ कहे, ईसाई और मुसलमान युवक ने पूछा, श्रीमान जी चोटी रखने से क्या लाभ?
गुरु ने पूछा, अच्छा आप बताएं, गला कस देने वाली टाई और गला खुजलाने वाली दाढ़ी से क्या लाभ? ईसाई बोला, टाई हमें ईसा मसीह के त्याग की याद दिलाती है, और मुसलमान युवक बोला, दाढ़ी हमें अल्लाह की कुदरत की। तो फिर चोटी भी तो हमें अपने भगवान की, अपने सनातन आदर्शों की याद दिलाती है, हम उसे धारण करते हैं तो इसमें क्या बुरा है?
रामचंद्र की आत्महीनता दूर हो गई, उसने मुंडन संस्कार कराकर चोटी धारण कर ली।
छह, एक साधु कह रहे थे, शिखा देव शक्तियों से संपर्क का माध्यम एरियल है। इस पर एक नास्तिक सज्जन हंसे और बोले, चोटी संदेश और प्रेरणाएं कैसे ग्रहण कर सकती हैं? साधु ने कहा, निर्जीव लोहे का एरियल पकड़ सकता है तो चोटी क्यों नहीं पकड़ सकती?
उन्होंने कहा, एरियल का संबंध तो यंत्र से, रेडियो से होता है। साधु बोले, यह शरीर किसी रेडियो से कम है,
सारी मशीनें इसी की नकल हैं। उन सज्जन को कोई प्रतिवाद करते न बना।
94, यज्ञोपवीत धारण, नीति कर्तव्य अपनाने का व्रत करें। प्रश्न 1, शिक्षा का प्रयोजन क्या है? 2, यज्ञोपवीत धारण करने का क्या तात्पर्य है? 3, यज्ञोपवीत धारण द्विजित्व की प्रतिज्ञा किस प्रकार है? 4, यज्ञोपवीत संस्कार न करवाने का कारण क्या है? 5, यज्ञोपवीत संस्कार को उसके स्थान पर पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
6, यज्ञोपवीत के 9 धागे किन किन सद्गुणों के प्रतीक है? 7, यज्ञोपवीत गायत्री माता का स्वरूप क्यों माना जाता है तथा इसका तात्पर्य क्या है?
8, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, लघु से महान और आत्मा से परमात्मा किस तरह बन सकता है? 9, उपनयन संस्कार करवाने की दक्षिणा के स्वरूप हमें क्या देना चाहिए? 10, युग निर्माण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में बड़ी सहायता किस प्रकार मिल सकती है? कथाएं 1, पिता ने स्वयं यज्ञोपवीत कराया। विद्वान पिता के विवेकवान पुत्र ने पूछा, पिताजी यह कच्चे धागे गले में डालने का क्या मतलब है? पिता बोला, मनुष्य जीवन को विवेक से बांधकर रखा जाए ताकि मनुष्य सांसारिक आकर्षणों में ही उलझकर न रह जाए वरन अपना पारमार्थिक लक्ष्य भी पूरा करने के लिए सजग रहे। जिसका यज्ञोपवीत धारण सार्थक हुआ यह बालक आगे चलकर जगद्गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ। 2, गुरुदेव आप तो कहते हैं द्विज ब्राह्मण को कहते हैं जबकि द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। शिष्य ने आशंका व्यक्त की तो गुरु ने समझाया, वत्स दोनों अर्थ सही हैं।
जन्म से सभी एक सी परिस्थिति में हैं, पर यज्ञोपवीत के बाद से व्रतधारी केवल सांसारिक बातें ही न सोचकर परलोक और परमार्थ की बात भी सोचता है। यह आध्यात्मिक जन्म है, यह जन्म होने से ही मनुष्य द्विज होता है।
3, श्री विष्णु शर्मा बोले, तात मैं अब तुम्हारा उपवीत संस्कार कराऊंगा। निष्कलंक प्रभु ने पूछा, पिताजी यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है? पिता बोले, वत्स जन्म से सभी शूद्र होते हैं, किंतु जब वही शूद्र कुछ संकल्प व व्रत लेकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने लगता और ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाता है तो ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण बनाने का प्रतिज्ञा समारोह ही है यह यज्ञोपवीत संस्कार। कल्कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए और यज्ञोपवीत संस्कार के लिए तैयार हो गए। 4, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से सिंहासन लेकर फिर उन्हें ही राज्य भार सौंपा तो शिवाजी बोले, भगवान राज्य तो अब आप कीजिए, मुझे कोई और आज्ञा दीजिए। समर्थ बोले, शिवा जो काम मैं करना चाहता हूँ वह राज्य से भी कठिन है, तू यह काम कर, मैं हिंदुत्व की शिखा और यज्ञोपवीत की रक्षा करूंगा, अन्यथा सारा देश मलच्छ हो जाएगा। शिवाजी ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और समर्थ गुरु रामदास वहां से धर्म जागृति अभियान के लिए चल पड़े। 5, यज्ञोपवीत के साथ गायत्री उपासना की अनिवार्यता क्यों जुड़ी हुई है? महात्मा आनंद स्वामी से एक पंजाबी ने प्रश्न किया।
आनंद स्वामी बोले, यज्ञोपवीत केवल परलोक की प्रेरणा नहीं देता वरन वह इस लोक को सुखी, सशक्त व समुन्नत बनाने की प्रेरणा देता है। यही बात गायत्री उपासना के बारे में भी है। उस महामंत्र में परलोक के साथ लौकिक सुखों की भी कामना की गई है, इसीलिए यज्ञोपवीत और गायत्री संस्कार जोड़कर रखे गए हैं।
6. यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ तो गुरु ने शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु का नियम था कि वे यज्ञोपवीत के समय एक बुराई छुड़वाया करते। शिष्य बड़ा चतुर था, बोला आज से कौवा नहीं मारा करूंगा। इच्छो प्रतिज्ञा में भी सावधान रहने वाला यही बहेलिया संत श्रमणक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 95. ज्ञानज्ञ का प्रकाश घर घर पहुंचाया जाए। प्रश्न 1. मनुष्य की महानता और निकृष्टता किस तरह उसकी मन स्थिति पर निर्भर है।
2. विचार किस तरह मनुष्य के लिए उपयोगी है। 3. इस समय जो प्रगति की विविध चेष्टाएं की जा रही हैं, वे असफल क्यों हो रही हैं। 4. अब समाज की उन्नति के लिए किस तरह के प्रयत्न किए जाएं।
5. राजनीतिक क्रांति के बाद सबसे पहली आवश्यकता क्या है। 6. युग निर्माण योजना द्वारा संचालित ज्ञानयज्ञ की कार्य पद्धति को समझाइए। 7. इस ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया को व्यापक बनाने के लिए क्या और किस तरह का सहयोग आवश्यक है।
8. झोला पुस्तकालय किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए है।
कथाएं 1. लंदन की एक सभा में स्वामी विवेकानंद भाषण कर रहे थे। मानव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सच्चे ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता है। ज्ञान प्रसार के लिए त्यागी और सेवाभावी आत्माएं चाहिए।
मुझे ऐसी 6 आत्माएं मिल जावे तो संसार का कायापलट हो सकता है। सभा में बैठी युवती नोबल मार्गरेट ने सभा समाप्त होने पर स्वामी जी से कहा, मैं नहीं जानती आपको 6 व्यक्ति मिलेंगे या नहीं, पर 7वें की पूर्ति में करूंगी। इन्हीं मार्गरेट ने एक दिन भारत आकर लोगों के घर घर प्रकाश पहुंचाया और सिस्टर निवेदिता के रूप में भारतवासियों से सच्चा प्यार पाया।
2. कलकत्ता के एक अंग्रेज जस्टिस की कन्या श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के घर पहुंची और उन्हें ईसाई धर्म की छोटी छोटी पुस्तकें भेंट करती हुई बोली, इनमें बड़ा ज्ञान भरा है, आप इन्हें अवश्य पढ़े।
श्री बैनर्जी ने पूछा, मैंने सुना है आप यह पुस्तकें लेकर साधारण घरों में भी जाकर लोगों को पढ़ाती हैं, इसमें आपको ग्लानि नहीं लगती।
लड़की बोली, जिन्हें अपने धर्म की संस्कृति का स्वाभिमान नहीं होगा उन्हें इस कार्य से ग्लानि अनुभव होगी। ईसाई धर्म भारत जैसे देश में फैल गया वह इसी निष्ठा का प्रतिफल था। 3. स्वामी रामतीर्थ गांव में एक मौलवी जी से पढ़ा करते थे।
मौलवी जी उन्हें ज्ञान धर्म की बातें भी बताया करते।
जब पढ़ाई समाप्त हुई तो रामतीर्थ के पिताजी ने मौलवी साहब को मासिक वेतन के अतिरिक्त कुछ और भी देने की इच्छा की। रामतीर्थ पास ही खड़े थे, बोले, पिताजी, जीवन का सच्चा स्वास्थ्य ज्ञान है। मौलवी जी ने हमें ज्ञान दिया है तो आप उन्हें गाय दीजिए, जिससे मुझे दिए स्वास्थ्य के बदले इन्हें भी स्वास्थ्य मिले। रामतीर्थ की इस श्रद्धा पर पिता और गुरु दोनों पुलकित हो उठे। 4. 12-13 वर्ष के एक लड़के ने बालक दल की स्थापना की। इस दल का उद्देश्य लड़कों को इकट्ठा करना, उन्हें दशहरा, दीपावली आदि पर्वों पर रामायण व महाभारत की कहानियां सुनाता था।
लोगों को यह कार्य बड़ा कौतूहलपूर्ण लगता, पर पीछे लोगों ने देखा कि इसी बालक ने अपने छोटे से कार्य से अपने को संगठित बना लिया कि जहां भी गया लोगों ने हिंदू संस्कृति की सर्वोपरिता स्वीकार की।
यह बालक और कोई नहीं मदन मोहन मालवीय थे। 5. खादरा के डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग की धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानवती 5 वर्ष से लगातार झोला पुस्तकालय चला रही हैं। इसे कस्बे का कोई घर ऐसा नहीं जहां युग निर्माण साहित्य न पहुंचा हो। 96. ज्ञान यज्ञ नव निर्माण का महानतम अभियान। प्रश्न 1. युग की अशांति, आशंका एवं असंतोष का मूल कारण क्या है। 2. वर्तमान नाटकीय वातावरण को स्वर्गीय सुषमा में कैसे बदला जा सकता है।
3. मानवीय सुख शांति बढ़ाने के लिए आजकल क्या किया जाता है, वास्तव में क्या किया जाना चाहिए।
4. सद्बुद्धि के संस्थापन हेतु क्या किया जाना चाहिए। 5. ज्ञानयज्ञ अभियान से क्या समझते हो, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्य पद्धति पर प्रकाश डालें। 6. ज्ञानयज्ञ का प्रयोजन समझाइए। 7. युग निर्माण योजना द्वारा किस प्रकार के विचार प्रसारित किए जाते हैं।
8. ज्ञान यज्ञ के होता उद्गाता कैसे लोग हैं।
9. हर घर की सच्ची संपत्ति क्या है। 10. झोला पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डालिए। कथाएं 1. राष्ट्रीय विद्यालय को चलाने के लिए योग्य संचालन की नियुक्ति के बारे में टेढ़ी बात यह थी कि उस पद के लिए 75 मासिक दिए जा सकते थे, पर जिस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी वह 500 से कम का नहीं हो सकता था, तो भी हिम्मत करके विज्ञापन दिया गया। दूसरे दिन जब 1,750 रुपये मासिक पाने वाला व्यक्ति उपस्थित हुआ तो लोग आश्चर्य में डूब गए और कहने लगे, देश समाज की आवश्यकता को समझने वाले त्यागियों की अभी कमी नहीं। यह व्यक्ति बड़ौदा कॉलेज के अध्यक्ष श्री अरविंद थे, जिन्होंने उस सम्मान को ठुकरा कर केवल 57:0 तक में काम किया। 2. चीनी यात्री हवेनसांग नालंदा से पढ़कर लौटा तो अपने साथ बहुत से धर्मग्रंथ भी लेकर चला। उसे सिंधु नदी के मुहाने तक पहुंचाने के लिए नालंदा के कुछ छात्र भेजे गए थे, वह भी साथ थे।
तभी तूफान आ गया और जहाज में पानी भरने लगा। यह देखते ही नालंदा के छात्र पानी में कूद गए, पर ग्रंथों को नष्ट होने से बचा लिया।
हवेनसांग इन भारतीयों के ज्ञान के प्रति त्याग और बलिदान भावना से इतना प्रभावित हुआ कि देश जाकर अपना सारा जीवन ही लोगों को सद्ज्ञान बांटने में लगाया। 3. मनु ने समझ लिया यह मछली अवतारी है, उन्होंने बहुत प्रार्थना की फिर भी उन्हें मत्स्य भगवान ने दिव्य रूप में दर्शन न दिए।
एक बार मनु नाव में वेद रखे हुए जा रहे थे कि समुद्र में तूफान आ गया। तूफान शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली उनकी नाव को सहारा दिए खड़ी है। मनु ने विनीत भाव से पूछा, भगवान आपने ही मेरी रक्षा की, आप कौन हैं?
मत्स्य भगवान दिव्य रूप में प्रकट होकर बोले, वत्स, तूने ज्ञान की रक्षा का व्रत लिया इसलिए तेरी सहायता के लिए मुझे आना पड़ा। 4. स्वामी रामतीर्थ छात्र थे।
आर्थिक तंगी के कारण पढ़ने के लिए तेल की कमी पड़ी तो उन्होंने कपड़ों का खर्च कम करके पढ़ना जारी रखा।
स्कूल के प्रधानाध्यापक को इस बात का पता चला तो रामतीर्थ की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी जैसी ज्ञान निष्ठा वाले व्यक्ति ही समाज को प्रकाश देते हैं। प्रधानाचार्य की भविष्यवाणी एक दिन सच हुई और स्वामी रामतीर्थ ने सारे संसार को आध्यात्म ज्ञान दिया। 5. कांचनी नरेश की राजकुमारी भूत बाधा से पीड़ित थी। योग्य मंत्रकार भी राजकुमारी को अच्छा न कर सके तब श्री रामानुज बुलाए गए।
उन्होंने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो, क्यों तुम प्रेत योनि में आए? भूत ने बताया, मैं पूर्व जन्म में विद्वान था पर अपनी विद्या औरों से छिपाए किसी को विद्यादान नहीं दिया, उसी से कठिन ब्रह्मराक्षस योनि में पड़ा हूँ। आप मुझे स्पर्श करें तो मुक्ति मिले, क्योंकि आपने केवल विद्याध्ययन ही नहीं किया समाज को ज्ञान बांटा भी है।
श्री रामानुज ने राजकुमारी के मस्तक का हाथ से स्पर्श किया जिससे प्रेत की मुक्ति हुई।
6. बड़े लड़के का शहर में विवाह किया गया। बहू आई तो देखा शाम हो गई है, घर में अंधकार घिरा है पर दीपक नहीं जला। उसने पूछा, दीपक क्यों नहीं जलाते? घर वालों ने पूछा, दीपक क्या होता है?
बहू अपने साथ माचिस लाई थी, उसने तेल बत्ती मिलाकर दीपक जलाया। अंधकार मिट गया तो सब बड़े प्रसन्न हुए और नई बहू को देवी मानकर पूजा करने लगे।
अज्ञानांधकार में भटकते जन जीवन को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उन्हें बहू की तरह प्रतिष्ठा मिलती है।
97. व्यक्ति और समाज का समग्र निर्माण कर सकने वाली शिक्षा पद्धति। प्रश्न 1. शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य कितने व कौन कौन से हैं? 2. प्राचीन काल में भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? 3. सिद्ध कीजिए कि प्रगति का मूल मंत्र शिक्षा पद्धति है। 4. वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष बताइए।
5. शिक्षा में परिवर्तन जन सहयोग से कैसे संभव है?
6. युग निर्माण शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालिए। 8. छात्रों द्वारा सीखे जाने वाले गृह उद्योगों पर प्रकाश डालिए।
9. जीवन निर्माण की कला से क्या समझते हैं? 10. प्रात्री पाठशालाओं की आवश्यकता क्यों है?
कथाएं।
1. गांधी जी से एक व्यक्ति ने पूछा, आप बुनियादी शिक्षा पर इतना जोर क्यों देते हैं?
गांधी जी बोले, यदि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को दस्तकारी और उद्योग न सिखाए गए तो शिक्षा बेरोजगारी की समस्या बन जाएगी।
उस समय लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया पर आज उसी गलती का फल लाखों बेरोजगारों के रूप में दिखाई पड़ रहा है।
2. ब्रिटिश सरकार ने देखा, यदि भारतीयों पर देर तक शासन करना है तो उनके मस्तिष्क बदलने चाहिए, फलस्वरूप यहां की शिक्षा पद्धति बदली गई। यह देखकर स्वामी श्रद्धानंद बड़े दुखी हुए, उन्होंने अथक परिश्रम करके आदर्श शिक्षा वाली संस्था की नींव डाली जो आज गुरुकुल कांगड़ी के रूप में इस देश की संस्कृति को बचाए हुए हैं। 3. राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय खोला जिसमें पढ़ाई के साथ दरिया और चटाई बुनना दूसरे दस्तकारी के काम सिखाए जाते और देश सेवा के भाव भी भरे जाते।
इस विद्यालय ने देश को संपूर्णानंद जैसे नेता दिए और आप भी पॉलिटेक्निक विद्यालय के रूप में सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। 4. हाथ पर हाथ रखे बैठे पुत्र को देखकर पिता ने कहा, बेटा तू तो इतना पढ़ा लिखा है, बेकार क्यों बैठा है? लड़का बोला, पिताजी क्या करूं, कोई नौकरी नहीं मिलती। पिता का हृदय धक्कर के रह गया। उसने कहा, जो शिक्षा हमको उद्यमी नहीं बना सकती उससे तो अनपढ़ किसान अच्छा, जो सैकड़ों को पेट तो भर लेता है।
5. कक्षा 10 तक पढ़ा राजस्थान का एक छात्र नौकरी के लिए मारा मारा घूम रहा था, कहीं भी कोई 100 रुपये मासिक वेतन देने को तैयार न था। तभी उसे युग निर्माण विद्यालय का पता चला। उसने एक वर्ष शिक्षण लेकर प्रेस उद्योग सीखा, आज उसका निजी प्रेस है और अपने से अधिक पढ़े उसके नौकर।
6. एक जापानी से एक हिंदुस्तानी ने पूछा, हमारा देश खनिजों की दृष्टि से ज्यादा समृद्ध है पर उन्नति आप लोग कर रहे हैं, यह क्यों? जापानी ने उत्तर दिया, हम मेहनत करना जानते हैं, उद्योग करना जानते हैं। आपके देश से 1 रुपये का कच्चा लोहा खरीदकर उसका इस्पात बनाकर आपको ही 13 रुपये में बेच देते हैं।
हिंदुस्तानी समझ गया, जब तक उद्योग विकसित नहीं होंगे तब यह देश उन्नति करेगा। 7. दो युवकों में बड़ी मित्रता थी। कुछ दिन पीछे एक ने क्लर्क की नौकरी कर ली, उसे 200 रुपये मासिक मिलने लगे। दूसरे ने साबुन बनाना शुरू कर दिया तो उसके उत्पादन की बचत 300 रुपये मासिक निकली। 10 वर्ष बाद क्लर्क की तनख्वाह 300 रुपये हो गई, जबकि दूसरे ने एक साबुन फैक्ट्री लगा ली। क्लर्क ने यह देखा तो उसके मुंह से यही निकला, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपेती लक्ष्मी, उद्योगी व्यक्ति ही लक्ष्मी पैदा करते हैं। 98. कला लोकरंजन व भावनाओं का परिष्कार करे। प्रश्न 1. कला एक संगीत का मुख्य प्रयोजन क्या है?
2. आजकल पैसा का दुरुपयोग अधिक हो रहा है, सदुपयोग क्यों नहीं?
कारण सहित समझाइए।
प्राचीन काल में कला का उपयोग किस लिए किया जाता था? 4. किन कला प्रयासों को सार्थक कहा जा सकता है?
5. मनोरंजन की सुरुचिपूर्ण योजनाएं किस प्रकार चलाई जा सकती हैं?
6. वर्तमान फिल्मों में क्या त्रुटियां हैं? फिल्म उद्योग का उपयोग सत्प्रवृत्तियों की प्रसन्नता हेतु कैसे किया जा सकता है?
7. न्यायालयों का मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए?
8. कला का उपयोग युग निर्माण हेतु कैसे किया जा सकता है?
कथाएं। 1. आचार्य धौम्य एक नृत्योत्सव में सम्मिलित हुए, उसमें उनका एक शिष्य भी था। दूसरे दिन पाठ चल रहा था, उस समय शिष्य ने आचार्य पर आक्षेप किया तो आचार्य धौम्य ने बताया, तात कला और रस उपेक्षणीय नहीं, उनकी विकृति की उपेक्षा की जानी चाहिए। 2. हरिद्रुमत की कन्या निश्चला के सौंदर्य से मोहित होकर राजकुमार कुशलाश ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु निश्चला ने उसे ठुकराते हुए कहा, मैं राज्य भोग प्राप्त करने की अपेक्षा अपनी कला और संस्कृति को जीवन देने वाली साधना करना चाहती हूँ। उन्होंने गंधर्वराज अथर्व सेन के पुत्र से विवाह कर लिया और आजीवन शास्त्रीय संगीत का प्रसार प्रचार करती रही। 3. विष्णु दिगंबर पुलुत्सकर ने एक पत्रकार से पूछा, आपका शास्त्रीय संगीत प्रसार आज के सिनेमा संगीत के सामने कहाँ टिक सकता है?
इस पर पुलुत्सकर ने कहा, मैं तब तक अपने प्रयत्नों से निराश नहीं हो जाऊंगा जब तक इस देश के लोग यह नहीं मान लेंगे कि कला का उद्देश्य लोकरंजन नहीं भावनाओं का परिष्कार है, भले ही मुझे और भी जन्म क्यों न लेने पड़े।
4. एक विदेशी चित्रकार से एक व्यक्ति ने पूछा, आजकल कामोत्तेजक चित्र ही अधिक पसंद किए जाते हैं, वही छपते और बिकते भी अधिक हैं, फिर आपके इन आदर्शवादी चित्रों को कौन खरीदेगा? सारी दुनिया खरीदेगी और लगाएगी। चित्रकार ने उत्तर दिया, आज न सही पर कामोत्तेजक चित्रों की बुराइयां जब पूरी तरह उभर उठेंगी तो लोगों को उन्हें जलाने और उनके स्थान पर अच्छे चित्र लगाने की उपयोगिता सूझेगी ही। 5. अश्लील चित्रों, पोस्टरों और साहित्य की होली जलाई जा रही थी।
कुछ लोग उछल उछल कर ढेर में आग लगा रहे थे।
तभी वहां पहुंचे बिनोवा जी और बोले, जितना उत्साह आप लोग बुरा साहित्य और बुरे चित्र जलाने में दिखाते हैं, उतना ही श्रेष्ठ और नैतिक उत्थान के प्रेरक साहित्य सिनेमा और चित्रों के निर्माण में उत्साह दिखाएं, तो खराब साहित्य फूंकने की नौबत ही न आए। 6. गांधी जी सलाह पर एक नशा विरोधी प्रदर्शनी लगाई गई। एक सज्जन ने पूछा, बापू इससे कितने लोग नशेबाजी छोड़ेंगे?
इस पर बापू बोले, यदि सिनेमा के पोस्टर लोगों को मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं तो यह चित्र लोगों को प्रेरणाएं क्यों नहीं देंगे?
उस प्रदर्शनी के बाद 100 व्यक्तियों ने शराब, ताड़ी और धूम्रपान का परित्याग किया।
7. एक समाज सेवी नेता भाषण दे रहे थे और कह रहे थे, यह बड़े डैक की बात है कि आज के छात्र उपन्यास पढ़ते हैं, अश्लील कहानियां पढ़ते हैं, रामायण और गीता नहीं पढ़ते।
एक युवक ने खड़े होकर कहा, श्रीमान जी इसलिए कोसिए उन प्रकाशकों को जो बुरा साहित्य छापने का पाप करते हैं, उन साहित्यकारों को जो अश्लील साहित्य तैयार करते हैं,
उन दुकानदारों को जो ऐसा साहित्य बेचते हैं, और उन समाज सेवियों को भी जो बुराइयां अधिक करने पर आदर्श कुछ नहीं रखते।
उस दिन से वह सज्जन सभाओं में भाषण करने की अपेक्षा झोला पुस्तकालय चलाने लगे। 99. रचनात्मक कार्यक्रमों से ही देश समर्थ बनेगा। प्रश्न 1. रचनात्मक कार्यक्रमों का क्या प्रयोजन है? 2. युग निर्माण योजना के रचनात्मक कार्य क्या हैं? 3. रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा का प्रसार एवं फैलाव किस तरह किया जाना चाहिए? 4. कुटीर उद्योगों को किस प्रकार चलाना चाहिए? 5. अन्न की उपज बढ़ाने तथा खाद्य वस्तुओं में देश को आत्मनिर्भर करने के लिए क्या प्रयत्न होने चाहिए? 3. स्वास्थ्य और मनोबल बढ़ाने के लिए किस तरह की कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए?
7. लोक शिक्षण के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकता है? 8. सेवा दलों के संगठन का महत्व रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत क्यों है? 9. क्या पुस्तकालयों की आज के समय में अत्यंत आवश्यकता है?
कथाएं।
1. खान अब्दुल गफ्फार से एक पत्रकार ने प्रश्न किया, आप इतना कम भाषण क्यों देते हैं? सीमांत गांधी ने उत्तर दिया, अब भाषणों को नहीं रचनात्मक कार्यक्रमों का युग है, किसी से कुछ कहने की अपेक्षा कुछ करके दिखाने से कहीं अधिक प्रेरणा मिलती है।
2. महाराज युधिष्ठिर से कक्षा अध्यापक ने पूछा, पाठ याद कर लाए? पाठ था सत्यमवद। युधिष्ठिर ने कहा, अभी नहीं। 2-3 दिन तक यही उत्तर मिला तो अध्यापक ने खींचकर कहा, तुम इतना छोटा सा पाठ भी नहीं सीख सके? युधिष्ठिर बोले, श्रीमान जी पाठ तो याद हो गया है, पर वह जीवन में उतरे नहीं, तब तक उसकी क्या सार्थकता? अध्यापक और विद्यार्थी यह सुनकर अवाक रह गए। 3. ऑफिस सैनिकों को डांटे जा रहा था, फिर भी लकड़ी का लट्ठा नहीं उठ पा रहा, तथा तभी उधर से निकला एक अश्वारोही।
घोड़े से उतरकर उसने सिपाहियों से कहा, लो हम भी हाथ लगाएं, आओ तो सभी एक साथ उगाएं। और इस बार लट्ठा उठ गया।
घोड़े पर चढ़ते हुए युवक ने अफसर से कहा, आज्ञा देना ही काफी नहीं, खुद करके भी दिखाना चाहिए। अफसर ने पहचाना, वह घुड़सवार और कोई नहीं, विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट है। फोर्ट स्वजीरो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पार्लियामेंट से लौटकर आते तो घर की वाटिका में शाक भाजी लगाते, उसे पानी डालते, गोड़ाई करते।
नौकर ने कहा, श्रीमान जी हम करेंगे, यह काम आप क्यों करते हैं? इस पर शास्त्री ने कहा, उपदेश केवल वाणी से नहीं क्रिया से भी दिया जाता है। हम परिश्रम करेंगे तो देश के किसानों में परिश्रम का भाव कैसे उत्पन्न होगा। पांच, ग्रामीणों को सफाई का महत्व समझाने के लिए गांधी जी ने सफाई दल तैयार किया। वे लोगों में जाते पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। गांधी जी ने दूसरे दिन से वर्धा के समीप गांवों में जाना और झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू कर दिया।
देखते देखते सारे गांव वाले उमड़ पड़े और सफाई में जुट गए।
गांधी जी ने स्वयं सेवकों से कहा, जो कहना चाहते हो उसे करके भी दिखाओ।
सिक्स, राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक गांव है पालू। इस गांव के सभी लोगों ने प्रतिज्ञा करके धूम्रपान छोड़ दिया। दुकानदारों ने बीड़ी सिगरेट बेचना बंद कर दिया। उससे हुई बचत इकट्ठी की गई तो गांव की सम्मिलित वार्षिक बचत 6000 रुपये की हुई।
इस समाचार ने ही हजारों अन्य लोगों को प्रभावित किया और सैकड़ों अन्य लोगों ने स्वतः ही धूम्रपान छोड़ दिया।
सेवन, महर्षि कर्वे ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रौढ़ पाठशाला चलाए। लोगों ने उसका विरोध किया पर वे अपने प्रयत्नों में जुटे रहे और अंत में वही विद्यालय भारतवर्ष का पहला कन्या डिग्री कॉलेज बना। एट, स्वतंत्रता आंदोलन चला रहा था। गांधी जी ने कहा, जब तक अंग्रेज सरकार यह नहीं समझती कि भारतीय हमारी बात नहीं मानेंगे, वे अपनी व्यवस्था आप जुटा सकते हैं झुकेगी नहीं, अतएव रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। नमक सत्याग्रह पहना कार्यक्रम था जिससे सारे देश में सत्याग्रह की लहर जाग पड़ी। 100, अनीति असुरता के विरुद्ध प्रबल संघर्ष किया जाएगा। प्रश्न,
एक, गीता के रहस्यवाद से क्या समझते हो? मानव के आंतरिक शत्रु कौन कौन से हैं? दो, अनीति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना क्यों आवश्यक है? तीन, समाज की वर्तमान स्थिति में किसी भी व्यक्ति पर सहज ही विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है।
इस वाक्य का मर्म समझाइए।
चार, वर्तमान समाज की प्रगति में कौन सी कुरीतियां आड़े आ रही है, उनके उन्मूलन हेतु सुझाव देवे। पांच, इस युग में बहादुर किस माना जाएगा। छह, हमारे समाज के प्रमुख कलंक कौन से हैं, उनसे बचने के उपाय बताओ। सात, आगामी युग में कैसे परिवारों की स्थापना करनी होगी। आठ, अवांछनीय तत्वों का उग्र प्रतिरोध कैसे किया जाएगा। नौ, ठगी एवं हरामखोरी को बंद करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं।
टेन, संघर्ष की बहुमुखी प्रचंड प्रक्रिया से क्या समझते हो। कथाएं,
एक, अकबर ने राणा प्रताप को संदेश भेजा कि यदि आप हमसे शत्रुता छोड़ दें और संधि कर लें तो आपको यों जंगल जंगल भटकना न पड़े, आप जो भी राज्य चाहें हम दे सकते हैं।
अकबर के प्रलोभन को ठुकराते हुए महाराणा प्रताप ने लिखा, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मुझे जंगल जंगल भटकना तो क्या, प्राण देना पड़े तो भी स्वीकार, पर किसी प्रलोभन के आगे झुकना स्वीकार नहीं। टू, समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा लेने के बाद शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आदेश दीजिए आपकी गुरु दक्षिणा कैसे चुकाऊं। शिवा, तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु रामदास ने कहा, यह मानते हुए भी कि विदेशियों से लड़कर जीतना कठिन कार्य है, शिवाजी ने गुरु का आदेश सहर्ष शिरोधार्य किया और आजीवन मुगलों से लड़ते रहे। उनके इस शौर्य से भारतीय इतिहास के पन्ने अनंत काल तक जगमगाते और अपनी संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा देते रहेंगे। थ्री, कुमारगुप्त मगध के राजा थे। उन दिनों हूं मगध पर निरंतर आक्रमण करते, प्रजा को कष्ट देते और उनका धन लूट ले जाते। कुमारगुप्त अनुभव कर रहे थे कि हूनों की संगठित शक्ति का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तब उनके पुत्र राजकुमार स्कंदगुप्त तैयार हुए और पिता से युद्ध की आज्ञा मांगी। कुछ तो छोटी आयु कुछ पुत्र स्नेहवश कुमारगुप्त आज्ञा नहीं दे रहे थे। तब स्कंदगुप्त ने कहा, पिताजी का डटकर मुकाबला करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, यदि उसमें प्राण भी चले जाएं तो क्या होगा। पिता ने आज्ञा दे दी।
समुद्रगुप्त ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद हूनों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर विजय प्राप्त की।
जनता ने उनका जो स्वागत किया कहते हैं, इतिहास में वैसा अभूतपूर्व स्वागत किसी को नहीं मिला। फोर, रावण ने एक और कूटनीतिक चाल फेंकी।
बोला, अंगद, जिस राम ने तेरे पिता को मारा तू उन्हीं की सहायता कर रहा है, मेरे मित्र का पुत्र होकर भी तू मुझसे बैर कर रहा है। अंगद हंसा और बोला, रावण अन्याय से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह मेरा पिता हो अथवा आप ही क्यों न हो।
अंगद के यह तेजस्वी शब्द सुनकर रावण को उत्तर देते न बना। फाइव, समुद्र बांधा जा रहा था। तब तक एक गिलहरी भी अपनी पूंछ में थोड़ी मिट्टी भरकर लाती और समुद्र में पटक देती।
उसका यह श्रम देख राम ने पूछा, गिलहरी तेरे बालों में रत्ती भर मिट्टी आती है, फिर परिश्रम से क्या लाभ।
गिलहरी बोला, भगवान असुरता को मिटाने में यदि मैं थोड़ा भी सहयोग कर सकती हूँ तो उससे पीछे क्यों हटूं, थोड़ा ही सही समुद्र कुछ तो पुरेगा। अतिशय प्रसन्न हुए राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अनीति के विरुद्ध जहां तुम्हारी जैसा निष्ठा होगी वहां असुरता कभी ठहर न सकेगी। सिक्स दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी को संधि वार्ता के अनुसार पद्मिनी का चित्र दर्पण में देखकर लौट जाना था, पर उसका असुर जाग उठा। उसने राणा भीम सिंह को धोखे से बंदी बना लिया।
राजपूत अब यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि राणा को कैसे छुड़ाया जाए। तब 12 वर्षीय वीर बालक बादल और गोरा ने दुश्मन से निपटने की ठानी। उन्होंने खिलजी को संदेश भेजा कि महारानी पद्मिनी का डोला आ रहा है। स्वयं डोले में बैठकर और साथ में कहारों के रूप में अपने सैनिक लेकर उन्होंने खिलजी पर आक्रमण कर दिया। स्वयं शहीद हो गए, पर उन्होंने राणा भीमसिंह को कैद से छुड़ा लिया और अलाउद्दीन को डेरा समेटकर भाग खड़े होने का विवश कर दिया।
सेवन सीता की करुण पुकार सुनते ही जटायु बाहर निकल आया और महाबली रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण ने तलवार से उसके पंख काटते हुए कहा, तुच्छ गिद्ध, रावण से टकराने का परिणाम क्या होता है, ले उसे भुगत।
धराशाय जटायु ने कहा, दुष्ट रावण, मरना तो मुझे था ही, कल नहीं आज ही सही, पर याद रख, जो भी लोग यह घटना सुनेंगे वह छोटे और मेरी तरह कम शक्ति वाले होंगे, तो भी अपनी आंखों के आगे अनीति और अत्याचार होते न देखेंगे।
एट तुर्की ने कीशुट को कैद कर दिया।
जेल में पड़े कीशुट के सामने शर्त रखी गई, यदि आप इस्लाम स्वीकार कर ले तो आपको मुक्त किया जा सकता है। कीशुट ने विचार किया और हंसकर उत्तर दिया, मृत्यु और लज्जा, इन दोनों से किसे स्वीकार किया जाए, आज तक मेरे सामने ऐसी उलझन नहीं पड़ी। मृत्यु जीवन का अनिवार्य रुख है, तो फिर उससे डरकर अपना सिर क्यों नीचा करूं। जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने अपना धर्म न बदला, आज केवल वही मेरा साथी है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं।
ईश्वर की आज्ञा पूरी करो,
मरने के लिए तैयार हूं, कलंक लगाने के लिए नहीं।
नाइन चलते चलते शाम हो गई तो गुरु नानक पास के गांव में एक निर्धन किसान के यहां ठहर गए।
उस गांव के सेठ ने यह सुना कि आज रात्रि को गुरु नानक यहीं विश्राम कर रहे हैं, तो वह भी उनके दर्शन के लिए गया।
उस समय नानक भोजन कर रहे थे।
भोजन में सूखी रोटी और दाल थी।
ऐसा रूखा सूखा भोजन करते नानक को देखा तो उस सेठ को बड़ा बुरा लगा।
उसने कहा, आप ऐसा भोजन क्यों कर रहे हैं?
इस गांव में तो जो भी कोई संत महात्मा आता
है वह मेरे यहाँ ही ठहरता है।
नानक ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, महोदय, मैं तो श्रम की कमाई से उत्पन्न अमृत खा रहा हूँ। निर्धन व्यक्ति के शोषण से बने पकवान मुझे पसंद नहीं है। 10th Sun 1885 पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह के समय प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक को इसलिए नियुक्त किया गया कि वह आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर सभास्थल पर यथास्थान बिठाल सके। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे चीफ जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। जैसे ही वह विद्यालय के फाटक पर पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक ने अंदर जाने से रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटे, मेरे पास तो कोई निमंत्रण पत्र है नहीं, रानाडे ने कहा। तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक ने आपत्ति की। द्वार पर रानाडे को रुका देख स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए
और उन्हें अंदर मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे,
पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। उस स्वयं सेवक की कर्तव्य निष्ठा, साहस और निर्भीकता से रानाडे बहुत ही प्रभावित हुए। यह छात्र आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले हुआ।